नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। 1957 के बाद भारत में एक तरफ बंटवारे की आग, दंगों का जहर और सत्ता की जद्दोजहद थी और दूसरी तरफ नेहरू एडविना का परवान चढ़ता हुआ रिश्ता। एक मुश्किल हालात में दोनों के करीब आने की कहानी बेहद रोमानी है। स्पेशल स्टोरी में आज कहानी जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन के रिश्ते की। मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे समझदारी से और भरोसे के साथ बात करे, जैसा कि तुम कर सकती हो। मैं खुद पर से भरोसा खो रहा हूं। जिन मूल्यों को हमने पाला, उनका क्या हुआ, क्या हो रहा है, हमारे महान विचार कहाँ हैं। ये लाइन उन लेटर का हिस्सा है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1948 में एडविना माउंटबेटन को भेजा था। बंटवारे के बाद जो माहौल था, उसमें एडविना नेहरू का सहारा बनी हुई थी। नेहरू और एडविना दोनों ही एक दूसरे को पत्र भेजा करते थे। एडविना माउंटबेटन भारत की आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। नेहरू और एडविना के बीच लगातार होती मुलाकातें दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी। एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन ने भी स्वीकार किया था कि नेहरू और उनकी माँ एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, देवर इन लव, यानी वो प्यार में थे। उनके बीच की भावनाओं और गहरे प्यार को समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा। मई की गर्मियों में पहाड़ी शहर मशोबरा में नेहरू और एडविना के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हुई थी। यहाँ नेहरू एडविना के अलावा उनकी बेटी पामेला भी थी। यहाँ नेहरू और एडविना एक दूसरे में खोए से रहते थे। पहाड़ पर नेहरू के साथ बिताए उन दिनों ने एडविना के जीवन में ठहराव ला दिया। उनकी बेचैनी, क्रोध, जैसे सब कुछ गायब हो गया। अब तक दोनों की नज़दीकियों के किस्से आम हो चुके थे। नेहरू से जितनी प्रभावित एडविना माउंटबेटन थी, उतनी ही प्रभावित उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स भी प्रभावित हुई थी। अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में पामेला लिखती हैं, जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, मैं तभी से उनकी आवाज़, कपड़े पहनने के तरीके, सफ़ेद शेरवानी और उनके बटन होल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्मजोशी की मुरीद हो गई थी। नेहरू की जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर बताते हैं कि एडविना और नेहरू के रिश्ते का सबसे पुख्ता सबूत उन्हें टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके रूसी मोदी ने दिया था। एमजे अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं, 1949 से 1972 के बीच रूसी मोदी के पिता सरहोमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल होमी मोदी के साथ ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेहरू के शयन कक्ष में जाकर उन्हें बताएं कि मेज़ पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतज़ार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू का शयन कक्ष का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आँखें मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा इशारा किया। रूसी मोदी ने झटपट दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद नेहरू खाने की मेज़ पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहां पहुंच गई। एक तरफ दो दिल पास आ रहे थे और साथ ही उनकी जुदाई का समय भी नज़दीक आ रहा है। 21 जून 1948 की तारीख मुकर्रर थी, जब माउंटबेटन दंपत्ति को इंग्लैंड लौटना था। नेहरू ने एडविना को मनाने की कोशिश की कि वो रुक जाए, शरणार्थियों के लिए अपना काम करती रहें, लेकिन एडविना रुक नहीं पाई। आखिरकार वो रात आई जब गवर्नर हाउस में शानदार विदाई भोज दिया गया। इस विदाई में एडविना की आंखें भीग गई थीं। इंग्लैंड जाने के बाद एडविना लगातार नेहरू को खत लिखा करती थीं। नेहरू भी ब्रिटेन आते तो सारे आधिकारिक काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते, ताकि एडविना के साथ अधिक से अधिक समय बिता सकें। एडविना का भी यही हाल था। वो भी एक बार 5 हफ्तों के लिए भारत लौटी ताकि अपने जवाहर के साथ रह सकें। नेहरू और एडविना के रिश्ते को सभी ने पवित्रता के साथ देखा। कहते हैं कि नेहरू और एडविना को इस हद तक आगे बढ़ने देने के पीछे उनके पति माउंटबेटन की मौन सहमति थी। इससे भारत में उनका काम आसान होता गया। वैसे भी उनके और एडविना के बीच कुछ बाकी नहीं रह गया था। 59 साल की उम्र में 21 फरवरी 1960 को एडविना ने अंतिम सांस ली। नेहरू ने अंतिम सलामी देने के लिए त्रिशूल जहाज से भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को भेजा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।